الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید.
جزاک اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین.
ہمارے پاس سے کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام محمد ذکری ہے. مجھے یہ سوال کرنا مفتی صاحب سے کہ قربانی کرتے ہیں, گائے کی قربانی کرتے ہیں اور گائے کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے, اگر بچہ زندہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے اور مردہ تو کیا اس کا حکم ہے, اور گائے کی قربانی ہو جائے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قربانی تو ہو جائے گی, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب قربانی کے جانور کی شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں, کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے, تو صرف اس کا حاملہ ہونا, اس کے پیٹ میں بچے کا ہونا یہ اس بات کا سبب نہیں بنے گا کہ اس کی قربانی نہ ہو, گائے کی قربانی ہو جائے گی. اب اگر بچہ مردہ نکلا ہے تو اسے پھینک دیں گے, اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ میتا یعنی مردار ہے وہ, اور اگر وہ زندہ نکلا ہے تو پھر اس صورت میں اسے ذبح کیا جائے گا, ذبح کر کے اسے کھایا جا سکتا ہے.
یعنی اس بچے کو بھی ذبح؟
جی بالکل, ذبح کیا جائے گا, اسے کھایا جا سکتا ہے. مردہ نکلا تو پھر اس صورت میں اسے پھینک دیا جائے گا, اسے نہیں کھایا جا سکتا.
ٹھیک ہے. اچھا, اگر پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ بکری ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, تو پہلے سے پتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو بھی قربانی کے دن نہیں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, حاملہ کی قربانی ویسے تو جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے. لیکن اگر کسی نے اس حالت میں بھی قربانی کر لی تو قربانی تو بہرحال ہو جائے گی, اور نہیں کرتا اس کی جگہ دوسرا جانور لے لیتا ہے جو اس سے بہتر ہے یا اس کے جیسا ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بلکہ اسے چاہیے کہ ایسا کر لے. اگر تو وہ شریف فقیر نہیں ہے کہ اس نے متعین کر لیا, نظر مان لی اس نے کہ یہی جانور میں قربان کروں گا, ویسے ہی قربانی کا جانور اس نے پیرے سے لے لیا, وہ پتا چلا کہ گابھا نے اور جو ہے وہ بچہ اس کے پیٹ کے اندر, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو تبدیل کر لے تو بالکل تبدیل کر سکتا ہے, لیکن جو زیادہ قیمت کا ہونا چاہیے اس کو.
ٹھیک. جی مدیس صاحب, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نابالغ بچے کا وضو نہیں ٹوٹتا, کیا ایسا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اس کی مزید وضاحت فرما دیجئے.
نابالغ بچے کا وضو نہیں ٹوٹتا.
دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی شرعی احکام نہیں ہے, لہذا اس کے لیے وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن جب اس کا وضو ٹوٹنے والی کوئی بات پائی جائے تو اب دوبارہ اس کے اوپر وہ وضو کرنا لازم نہیں ہے, لیکن اسے چونکہ سکھانا ہے, عادی بنانا ہے, جیسے نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی تو ہم اسے نماز کا پابند بنانے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں, تو اسی طرح اسے وضو کروایا جائے گا. یعنی قرآن مجید فرقان حمید اس نے پڑھنا ہے یا اس نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے تو اس کو وضو کرنے کی عادت ڈالی جائے,
عادت ڈالی جائے. لیکن اس کو یہ بتایا جائے گا نا کہ
بتانا ضروری نہیں ہے, اسے بتانے کے مطلب تو یہ ہوگا کہ اس کو آپ جری کریں گے, اسے بس آپ
نہیں نہیں اس کو یہ بتایا جائے کہ جیسے واش روم جاتے ہیں پھر وضو کر لیں,
یہ
تربیت
بالکل کی جائے گی,
کہ جو وضو ٹوٹنے کی کوئی چیز ہے, کہیں اس کا خون نکل آیا یا کوئی اور ایسے مسئلہ, اس کو یہ بتایا جائے گا وضو کرو.
بالکل
ٹھیک ہے. جی پڑھتے ہیں مسجد سوال.
آپ ویسے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے قاعدہ اول اور قاعدہ آخر میں اشہد ان لا الہ پر اگر انگلی اٹھانا بھول جائیں تو اس پر کیا سجدہ ہوگا یا کیا کرنا ہوگا, برائے کرم ارشاد فرما دیجیے.
ठीक है, तशहुद में उंगली उठाना भूल गया, मैं चाहूंगा ये भी आप बता दें कब उठानी चाहिए, क्योंकि ये कह रहे कि अल्लाह पे हम भूल जाते हैं या भूल गए, सजदा साहब होगा कि नहीं और उठानी कब है?
सबसे पहले तो ये है कि सजदा साहब तो इस पर है नहीं, और किसी ने अगर नहीं उठाई उंगली तो इस सूरत में गुनाहगार भी नहीं है। अलबत्ता सुन्नत मुबारक है उंगली का उठाना, ये उंगली उठाना चाहिए, और तरीकेकार ये है कि ये दोनों उंगलियां आपकी अंदर हो जाएंगी और अंगूठा और आपकी जो बीच वाली उंगली है उसका दायरा गोल दायरा बन जाएगा, और इस उंगली से आपने इशारा करना है, इसको उठाना है, और जो उठाने का वक्त है वो अशहदु अल्ला पर आपने उठाना है और इल्ला पर आके इसको आपने सीधा कर लेना है। अशहदु अल्ला पे उठेगी ला के ऊपर और इल्ला पर आकर ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे।
एक कलमा बीच में इला आ रहा है, अल्लाह इल्ला,
इल्ला का मतलब होता है नहीं है कोई, ठीक है, तो उस पर उंगली उठानी, और इल्ला का मतलब फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, तो वहां पर आपने आके अपनी उंगलियों को नीचे कर लेना है। ये तरीकेकार है उंगलियां उठाने का, तशहुद में उंगली उठाने का। लेकिन अगर कोई भूल गया, उसने उंगली नहीं उठाई, इशारा नहीं किया उंगली से, तो इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं, ना उसके ऊपर सजदा साहब होगा, लेकिन बगैर किसी उजर के छोड़ना नहीं चाहिए, भूल के ऊपर पकड़ नहीं।
ये एक मरतबा ही उठानी है या पूरी तैयार में कुछ
नहीं, ये इस तरह नहीं, ये तरीकेकार नहीं है, एक दफा उठानी है और उसको सीधा कर लेना है, यही फिक्र हनफी का मोतमद कौल है और यही तरीकेकार है। और बाज लोग मुख्तलिफ मौके पर, जैसे बाजों की आदत होती है क्याम में खड़े होते हैं तो उसमें भी वो यूं कर रहे होते हैं, ये इनकी आदत होती है। रुकू में जाएंगे तो बाजू का रुकू के अंदर भी इसी तरह उंगली
उंगली उठा
रहे कर रहे होते हैं, ये बहुत पुराना देखा भाला है लोगों का इस तरह क्या करते थे। तो इसी तरह जो है वो तहियात में बैठेंगे तो इब्तिदा के अंदर एक मरतबा उंगली उठाएंगे, फिर दरमियान में उठाएंगे, फिर आखिर में भी उंगलियां उठाते हैं, इस तरह नहीं करने का। वो तरीकेकार यही है कि अशहदु अल्ला इलाहा ला के उम्मे उठानी है, इल्लल्लाह पे आपने नीचे रख दी और इसके बाद आगे दोबारा उंगली का इशारा नहीं करना,
ठीक है। और जब उंगली उठा भी ले तो फिर उसके बाद अपनी मुट्ठी को खोल दें, यानी सारा पहले से ही बंद करके रखते हैं, यानी शुरू से ही कुछ शुरू से ही तहिया शुरू किया तो बंद कर ली, अच्छा वो उंगली उठाई भी और नीचे भी कर ली, फिर उसके बाद मुट्ठी यूं ही रहती, खोल दें,
खोल देनी। जो सही तरीकेकार है उसके मुताबिक यही है कि आप दोनों उंगली अंदर कर लेनी है, इसका आपने दायरा बनाना है और फिर आपने एक दफा इशारा किया और उसके बाद ये सारा खुल के आपकी ये हथेली सीधी हो जाएगी,
ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ मैसेज की तरफ। गुजराम वाला से हमारी एक बहन ने पूछा है कि इस्लामी बहनों पर हज का फर्ज होता है।
इस्लामी बहनों पर भी हज उन्हीं शराइत की सूरतों में होता है जो मर्दों पर शराइत हैं उसके मुताबिक, यानी फर्ज की शराइत इनकी बराबर है, यकसा है। सिर्फ इतना है कि इनके ऊपर जो अदायगी लाजिम होती है कि करना कब होगा, तो उसके लिए एक शर्त ये होती है कि उनका अगर शरई सफर बनता है तो महरम साथ होना चाहिए, शोहर साथ हो या महरम साथ हो, तो इस सूरत में करना इनके ऊपर लाजिम हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा कि यानी फर्ज हो जाएगा कि अब ये जाएं। लेकिन अगर इनके ऊपर तमाम की तमाम वो शराइत पाई गई जो मर्दों के लिए पाई जाती हैं, महरम मौजूद नहीं है, तो हज अगर से फर्ज हो चुका लेकिन इसकी अदायगी जो है वो उसी सूरत में फर्ज है जबकि महरम इनका मिल जाए या शोहर हो वो साथ जा रहा हो, तो फिर इस सूरत में करना जरूरी हो,
ठीक है। और किसी के पास ये एहतमाम ना हो, ना इतने पैसे हैं कि वो महरम का भी खर्चा उठा कर जाए, तो ऐसी खातून क्या करे फिर?
इंतजार करेगी,
ठीक,
जब इसका कोई बंदोबस्त हो जाए तो उसके साथ चली जाए, और इतनी बड़ी उम्र हो जाती है करने के लायक ही ना रही तो फिर इस सूरत में ये होता है कि वो वसीयत कर दे या किसी को अपनी जगह पर वो भेज दे कि हज बदल वो कर ले,
हज बदल के तौर,
जबकि वो अब इस काबिल ना रही कि हज कर सके, इतनी बूढ़ी हो गई या ऐसी माजूर हो गई कि ठीक होने की उम्मीद नहीं उसकी, तो फिर इस सूरत में वो किसी को
या दुनिया से ही जा रही बिल्कुल, तो अब वसीयत
कर जाए।
अच्छा, औरत की तरफ से अगर हज बदल रहता हो तो वो औरत को ही भेजना होगा या मर्द को ही भेजना?
मर्द औरत की जगह, औरत मर्द की जगह हज कर सकती है, लेकिन मर्द की जगह मर्द ही करे ये बेहतर है, औरत ना करे मर्द की जगह, बेहतर ये है कि मर्द ही करे। लेकिन अगर एक दूसरे की जगह पर हज बदल किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मर्द तो औरत की तरफ से वैसे ही कर सकता है, लेकिन औरत मर्द की तरफ से करेगी तो भी हज्जे बदल अदा हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि मर्द की जगह मर्द ही हज्जे बदल करे,
ठीक है। और औरत की जगह मर्द करे तो उसमें कोई मसला?
कोई मसला नहीं,
ठीक है जी। मजीद सवाल,
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि क्या नाबीना पर कुर्बानी वाजिब होती है?
नाबीना पर कुर्बानी की शराइत में से पहली दफा ये सवाल इस तरह आया है। वैसे आमतौर पर इमामत के लिए मसले पूछे जाते हैं, अभी ना
के लिए होते हैं
और हज के लिए भी बात पूछते
हैं, जमात के अतबार से होते हैं मसले
तौर पर। कुर्बानी का क्या?
कुर्बानी कुछ चीजें होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर कुर्बानी लाजिम नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुसाफिर है, ठीक है, या बच्चा है, छोटा बच्चा है, साहिब निसाब है लेकिन नाबालिग है, क्योंकि उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं है। लेकिन अगर नाबीना शख्स साहिब निसाब है, उसके पास इतना माल मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर इस पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है, तो इसका नाबीना होना इस बात की रुकावट नहीं बनेगा कि उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम ना होती हो, उसको कुर्बानी करना होगी।
ठीक है, इसी तरह माजूर है।
जी बिल्कुल,
माजूर
ये कोई ऐसी वो उजर नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कुर्बानी साकित हो जाती हो, कुर्बानी लाजिम ना होती हो। अगर दूसरों की तरह ये भी साहिब इस्तेताअत हैं तो इनके ऊपर भी कुर्बानी लाजिम होगी।
होगी, ठीक है। तो हज का आपने कहा, हज में कुछ फर्क है?
जी, हज में नाबीना के ऊपर हज फर्ज नहीं है। सही रिवायत के मुताबिक के नाबीना अगरचे के कुछ साथ ले जाने वाला हो, इसके बावजूद भी उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होता।
नहीं होता। और अगर कर लेता है, जैसे हम हज फर्ज ऐसी वीडियोस देखते हैं कि ऐसे लोग वहां जब जाते भी हैं तो इनको लोग बड़े ही वो एक
अप्रिशिएट करते हैं उनको, तो बिल्कुल अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका फर्ज भी अदा होगा, लेकिन ये कि उसके ऊपर फर्ज है नहीं। बिरहाल
अच्छा, नाबीना की इस इन मामलात में कोई मदद करता है, चाहे मस्जिद जाने वाला है तो उसको रास्ते में लेके जा रहा है, हज के लिए कोई इसकी मामनत करता है कि भाई तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ तवाफ और दीगर मामलात में, मैं कोई इसको भी सवाब मिलेगा?
बिल्कुल सवाब मिलेगा, और ये सिर्फ नाबीना के एतबार से नहीं है, ये बहुत सारे एतबारात होते हैं। नाबीना तो एक अलग मामला हो गया, वो तो कम ही जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं जाते नाबीना, लेकिन जो बाज़ोकत माजूर होते हैं या बूढ़े शख्स होते हैं उनकी तादाद कुछ ज्यादा होती है, तो ऐसो की खिदमत करना, व्हील चेयर वाले होते हैं बाज़ औक़ात, नहीं पैदल चल पाते, तो उनकी खिदमत करना, उनका साथ देना, ये बड़ा सवाब का काम है। और नमाज के लिए तो बिलखसूस ले जाने के ऊपर तो फजीलतें भी अहादीस तैयबा के अंदर आई हैं कि जो नमाज के लिए ले जाए नाबीना को। तो बिरहाल ये तो वैसे ही है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़्वा, ये भलाई और नेकी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो।
माशाल्लाह। और नाज़रीन इकराम, ये ऐसे मौके होते हैं जिसमें आप इस तरह की भी कुछ नेकियां करके और हेल्प करके आप बड़ी दुआएं ले सकते हैं। बाज़ कर हसान साहब अगर साथ उनके जवान बेटा भी मौजूद होता है, लेकिन आप किसी की बूढ़ी वालदा या बूढ़े वालिद साथ होते हैं और वो मुसलसल भी उनकी व्हीलचेयर चला चला के उस ज़ईफ़ आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, दीगर और भी सामान है, तो जो काफिले के हमरा होते हैं और लोग होते हैं तो उनको चाहिए इसमें भी मामला।
बिल्कुल, अगर कोई शरीर रुकावट नहीं है
जी,
बिलखसूस मर्द है,
हाँ,
तो मर्द को तो चाहिए कि वो उनकी व्हीलचेयर चलाए, साथ दे, सामान बाज़ औक़ात होता है कि वो सामान उठा रहे उनके साथ, तो बहरहाल ये मौका होता है और ये चंद दिनों के मौके होते हैं। फिर बाज़ औक़ात बंदा उस वक्त सोचता है कि यार मैं क्यों ये करूँ, क्यों इनका साथ दूँ, लेकिन फिर वक्त गुजर जाता है ना, फिर ये चीज़ें याद
आता है
कि काश मैं उस वक्त ये कर लेता। लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, झगड़ते हैं, लेकिन उस वक्त कर लिया जो कर लिया, बाद में फिर जब सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या किया, तो ये इम्तिहान का मौका होता है और इसी मौके पर ये तमाम काम करने होते हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला उसका फ़ायदा होगा। हज मबरूर की एक निशानी उलेमा ने यह बयान की है कि जिसमें अपने रुफका पर खर्च करता हुआ जाए, अब वो खर्च करना भी एक तरह से मदद है, मुआवनत है, अच्छाई और भलाई है। तो इस तरह जब वो नेकी के काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, गाली गलौज नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो ये भी आपके हज मबरूर की एक निशानी होगी।
जी,
कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं और उसमें सजावट का जो सामान सजाते हैं, जब इसको ज़िबा कर लेते हैं तो उसके सामान का क्या करना चाहिए?
जी, सजाते हैं और कुछ लोग आइंदा के लिए भी रख लेते हैं, ज़ाहिर है जानवर तो लेना होता है, कुछ फौरन सदका कर देते हैं।
वो नजर की बात सूरतें होती हैं कि नजर मानने की बुनियाद पर जो है वो चीजें नजर करना होती हैं, वरना अगर उसे संभाल के रख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम अगले साल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, जानवर की
जो में ये होता है कि बाज़ औक़ात इसको ये नापाक हो जाते हैं, यानी कुर्बानी के वक्त तक इसको बाज़ औक़ात चीजें पहनाए रखी होती हैं जिससे इनके ऊपर बहता खून लग जाता है। अगर बहता खून लग गया है अब ये नापाक हो जाएंगी तो फिर इनको पाक करना ये जरूरी होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि कुर्बानी करने से कबल, जैसे अक्सर चीजें उतार ली जाती हैं, तो जो चीजें अब अगले साल के इस्तेमाल के लिए आप रख रहे हैं उनको पहले से उतार के रख लीजिए ताकि फिर वो नापाक ना।
ठीक है, और नापाक भी कोई हो गया तो अब उसको
पाक किया जाएगा, उसको
पाक उसको कर लिया जाएगा। कहते कैसे हैं आप, इस सजावट को कैसे देखते हैं? लोगों में बड़ा शौक होता है, जानवरों को सजाने का भी होता है, और कुछ इसमें हद से तजावुज करते हैं, कुछ इसको वैसे ही पसंद नहीं करते, होना क्या चाहिए?
देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की तज़ीम करता है तो ये दिलों के तकवे में से है। तो वहाँ एक तफसीर जो है वही कुर्बानी के जानवर की भी की गई है, तो इसकी तज़ीम करना यानी इसको अहमियत देना, इसका इकराम करना, ये शरीयत मुतहरा को मतलूब है, पसंदीदा है। लेकिन जाहिर है कि इसमें दो चीज़ें, नंबर एक ये कि नीयत होना ये ज़रूरी है, अच्छी नीयत हो, दिखावा आपका मकसूद ना हो या दिल का आपका एक शौक पूरा करना ना हो, बल्कि कुरान के हुक्म पर अमल करना, शरीयत के हुक्म पर अमल करना ये मकसद हो, तो फिर इस पर आपको सवाब मिलेगा, वरना जहरे के सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि जो आपने कहा हद से तजावुज करना, तो अब वो ना हो कि जिसमें शरीयत मुतहरा की खिलाफ वर्जी हो जाए। अब जैसे बाज़ लोग उसको बाज़ चीजें उसके ऊपर ऐसी लिख देते हैं, फिल्मी एक्ट्रेस के नाम लिख दिए उसके ऊपर, और नाम बाज़ औक़ात फिल्मी एक्ट्रेस के ऊपर रख रहे होते हैं कि तो फुलां है तो फुलां है फुलां, तो जानवरों का नाम, हालांकि जानवरों का नाम रखना चाहिए, अभी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानवरों का नाम रखते थे, लेकिन नाम तो वो होना कि जिससे आपका एक इस्लामी जहन जाहिर होता हो और एक मिजाज आपका पता चलता हो क्या है, तो नाम वो रखे कि जिससे ताज़ीम का इजहार होता हो, एक अच्छा नाम उसके ऊपर होना चाहिए। इसी तरह सजावट के जो तरीकेकार होते हैं वो भी बाज़ औक़ात हद से तजावुज कर जाते हैं, तो वो चीजें भी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट के अंदर ये चीज हो और ऐसी हो कि जो आपकी ताज़ीम को भी जाहिर करें और जो है वो आपकी नीयत भी उसके अंदर अच्छी हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब आपको जरूर मिलेगा।
ठीक है, माशाल्लाह। आपने कहा नाम रखने चाहिए, तो कैसे नाम रखें? इंसानों वाले इनके नाम होते हैं या कुछ और?
देखिए बहुत सारे नाम रखे जा सकते हैं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ ऊँटनियों के नाम थे, जैसे कसवा है, इसी तरह जो है वो आप अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अदबा है, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा था लुहैफ के नाम से और दुलदुल था याफूर था, इसी तरह बकरियों के मुख्तलिफ नाम थे जिसमें एक का नाम गौसा था। तो यूं आप अलैहिस्सलाम के अगर जानवरों के नाम याद कर लें तो उनमें से कोई एक नाम आप रख लें, वरना बिराल जो जैसे बगदादी रख लें उसका नाम, उसका नाम आप जो है वो मक्की रख लें, मदनी रख लें, अमीर अलसुन्नत रखते ही नाम, बहुत सारे नाम उसके अंदर रखते हैं, तो उन नामों को आप इख्तियार करें जिससे आपके ज़ौक का पता चलता हो कि ये आप क्या नाम रख रहे हैं। अगर आप फिल्मी एक्ट्रेस के नाम रख रहे हैं तो नाउज़ुबिल्लाह आप तो फिर मजाक कर रहे हैं, और आप जो है वो इस्लाम के एक अहम तरीन त्यौहार को आप एक मजाक बना रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ जो है इसको एक
इंटरटेनमेंट
कर रहे हैं, और साथ साथ आपने इसको त्यौहार बना के रख लिया जो इस्लामी त्यौहार नहीं है, इस्लामी तरीक़ेकार नहीं है। इस अंदाज के नामों को रख कर जो है वो अपने त्यौहार को मनाया जाए।
ठीक है जी, बढ़ते हैं मजीद सवाल।
अब्दुर्रहीम बात कर रहा हूँ कोयटा से। वालिद वाला दोनों वफात पा गए, क्या उनके लिए ईसा अलैहि सलाम के लिए एक ही कुर्बानी कर सकता है बंदा, या दोनों के लिए अलग अलग?
ठीक है, दोनों के लिए अलग करनी होगी या एक ही कर?
देखिए ईसा अलैहि सलाम अगर करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये कुर्बानी अपनी तरफ से ही आप करें, और उसका इशारे सवाब बिलखसूस अपने वालिदैन को आप कर दें, बाकी सारी उम्मत को इसका इशारे सवाब कर दें, तो ये इस अंदाज में हो सकता है।
ठीक, वो भले हर साल ही इसी तरह
हर साल करते रहे, यानी आप जिसकी तरफ से चाहें इस तरह हर साल करते रहें, और चाहें तो खास किसी की तरफ से आप एक को मुकर्रर करके कर लें, बाकी को आप सवाब इसका पहुँचा दें।
ठीक, मजीद सवाल।
मैं हैदराबाद से शाहरुख बात कर रहा हूँ, शाहरुख ब्रोही। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि सर ढांपे बगैर नमाज हो सकती है मर्द की?
सर ढांपे बगैर नमाज हो सकती है मर्द की?
इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, एक सूरत तो वो है कि जो मुसलमान से बईद है, कि मुसलमान ऐसी सोच रखे कि अगर वो नमाज को हल्का समझता है कि नमाज की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, इस वजह से वो सर को ढांपता नहीं है, तो जाहिर है कि ये सूरत इसकी नीयत की वजह से कुफर बन जाएगी कि नमाज की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा कोई नमाज काम नहीं है, मुअज़्ज़म नहीं है कि जिसके लिए इस तरह का एहतमाम किया जाए, और जाहिर है कि कोई मुसलमान इस तरह का तसव्वुर नहीं करता। दूसरी सूरत इसकी ये है कि सुस्ती काहिली की वजह से बंदा नहीं पहनता, तो ये मकरूह तंज़ीह ही है, नापसंदीदा है। और एक सूरत इसकी आम तौर पे हमारे यहाँ होती है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार नहीं है, और इनकी एक बड़ी तादाद होती है कि जो टोपी उतार के नमाज पढ़ रही होती है,
कसदन
करती है इस तरह, तो ये चीज़ गलत है। نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امامہ شریف بھی پہنا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار سر کو ڈھانپنا ہوتا تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ خذو زینتکم عند کل مسجد, کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو. مفسرین نے یہاں پر جو زینت اختیار کرنا ہے اس میں جہاں اچھے کپڑے خوشبو لگانا فرمایا ہے کہ یہ زینت میں شامل ہے, اسی طرح امامہ شریف پہننا سجانا یہ بھی زینت کے اندر شامل ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے صحابہ کرام علی مدوان کا طریقہ کار رہا ہے, وہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا رہا ہے. عمومی حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علی مدوان یہ سر ڈھانپ کر رکھا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے اس کے اوپر موجود ہیں کہ بالخصوص سفید امامے کے حوالے سے, سیاہ امامے کے حوالے سے اور کئی اماموں کے حوالے سے احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علی مدوان اسے پہنا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امام نماز کے وقت اپنے سر کو ننگا کر لیتے ہوں, کھلا کر لیتے ہوں, ایسا نہیں, بلکہ سر ڈھانپ کر ہی وہ نماز ادا کرتے تھے. اگر کوئی اس تصور کے ساتھ سر کو کھلا رکھتا ہے تو پھر وہ غلط کام کرنے والا ہے, وہ غلط کر رہا ہے, اس کی سوچ اور نظریہ جو ہے وہ غلط اور باطل ہے. تو بہرحال نماز تو اس کی ہو جائے گی, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کر ہی نماز ادا کی جائے.
ٹھیک ہے. بعض وقت ہم جس چیز کی سنت کے بارے بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے, اگر نہ کیا تو بھی نماز ہو جائے گی یا یہ عمل ہو جائے گا, تو کچھ لوگ پھر اپنا وتیرہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ قصدن ترک بھی کرنا اور پھر اسے کہنا یہ کون سا فرض ہے, یہ کون سا فرض ہے.
یہ جو مقصد شریعت ہے اس کے بالکل خلاف ہے. یعنی ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بعد کے بزرگان دین ہیں, وہ جب یہ سنتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے تو اسے اختیار کرتے. یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو پتا چلا کہ یہ سنت ہے تو اسے اختیار کر رہے ہیں, اور ہم اس طریقے پر آ رہے ہیں کہ پتا چلے کہ یہ سنت ہے تو اس کو چھوڑ دیں. یعنی یہ تو الٹ ہو,
بالکل برعکس.
امام ابو عثمان شہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں, یہ ایک محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقے کے اندر ان کے پاس حدیث سننے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ان محدث صاحب نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چادروں کے اندر نماز ادا کی. تو وہ کھڑے ہوئے گئے اور دو چادریں پہن کر آئے اور اس میں نماز انہوں نے مسجد کے اندر آ کے ادا کی. تو ان کے بیٹے نے, جو محدث صاحب بیان کر رہے تھے, ان کے بیٹے نے پوچھا کہ عمرے یا حج کے لیے جا رہے, کیونکہ جو بعد کا دور تھا صحابہ کرام علی مدوان کے بعد کا دور, اس میں عمومی طور پہ اس طرح دو چادریں یہ ترک ہو چکی تھی کیونکہ وسعت آ چکی تھی,
سلے ہوئے کپڑے عام,
سلے ہوئے کپڑے اور دیگر طریقے کار عام ہو چکے تھے. تو اب عام سر پہ اس طرح جو دو چادریں پہنتا تھا وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتا تھا, تو اس وقت پہنتا تھا. تو انہوں نے پوچھا بیٹے نے کہ یہ کہ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, بلکہ یہ اللہ کے ولی ہیں, جب یہ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واقعات کون پڑھنے والا نہیں جانتا کہ کیسی کیسی باتوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ عمل کیا کرتے تھے. جو سنتیں عادیہ ہوتی تھیں یا اتفاقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ہوا کرتا تھا تو اس پر بھی وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا, جبکہ اب یہ طریقہ کار واقعی ایک بہت بڑی تعداد اپناتی ہے کہ جی سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, تو اس کو ترک کر دیتے. نہ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ کہ جب پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو فوراً اس کے اوپر عمل کرنا,
ٹھیک,
نہ یہ کہ اس کو ترک کرنا.
ٹھیک. اور یہ سنتیں گویا کہ ہمیں فرائض کی تکمیل اور اس کی طرف پہنچانے والی ہیں. جب سنتوں پر آدمی اس طرح کارآمد رہے گا تو انشاءاللہ واجب اور فرائض یہ تو ترک ہونا اس سے بہت بعید ہو جائے گا, تو یہ کوشش کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں مزید سوالات.
مفتی صاحب سے ایک سوال عرض کرنا تھا, یہ بکرا چھت سے گر گیا تھا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, اب اس کی ٹانگ بندوائی ہے, تقریباً 10 دن ہو گئے وہ ایسا ٹانگ رکھ رہا ہے نیچے, کیا وہ بکرا قربانی پہ لگ سکتا ہے؟
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, جو جانور جس کے ٹانگ کے اندر لنگڑا پن آ جائے, اگر وہ اتنا ہے کہ چل کر خود قربان گاہ تک جا سکتا ہے, یعنی اس کو چلایا جائے تو خود ہی چلے گا اور بآسانی قربان گاہ تک پہنچ جائے گا, تکلیف اسے بھلے ہو لیکن قربان گاہ تک پہنچ جائے گا, تو ایسے بکرے کی قربانی یا ایسے جانور کی قربانی یہ ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو اب اگر یہ بکرا جو گرا ہے اللہ پاک جلدی اس کو ٹھیک کر دے, تو یہ اگر قربانی سے پہلے پہلے تک اس لائق ہو جاتا ہے کہ ٹانگ رکھ کر بآسانی قربان گاہ تک جا سکے, یعنی جہاں اس کو ذبح کرنا ہے اس جگہ تک جا سکے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی قربانی یہ ہو جائے گی.
ठीक है, और अगर ऐसा ही हुआ कि बस ऐसे टच कर रहा है वो बकायदा वजन अपना नहीं उठाता तो फिर रखना नहीं कहलाएगा?
नहीं, फिर रखना नहीं कहलाएगा। चल सके जब चल के जा सके आप रखेगा, और वजन नहीं उठा पाएगा तो चलना नहीं पाएगा।
ठीक है, और जानवर वैसे भी तीन टांगों पे भी चल लेते हैं, थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन ये कि इसको लिए बकायदा। अच्छा, ये ऐप पैदा हो गया, अब इसमें अगर लंगड़ापन भी जाहिर हो रहा है, ये चीजें हैं, और सहबेसियत आदमी है तो उसको क्या करना चाहिए?
देखिये, वैसे भी जो मुस्तहब है वो ये है कि जानवर तमाम तर उयूब से पाक हो।
ठीक है,
एक होता है बड़ा ऐब, एक होता है छोटा ऐब। बड़ा ऐब जिसका मतलब जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती, छोटा ऐब की कुर्बानी हो जाएगी लेकिन नापसंदीदा होती है। लेकिन बेहतर यही होता है कि जानवर तमाम की तमाम चीजों से पाक होना चाहिए। अब अगर कोई शख्स गनी है, मालदार है और उसके पास रकम मौजूद है, तो उसे चाहिए कि वो इस जानवर को बेचकर इसकी जगह इससे बेहतर कोई जानवर खरीद ले।
ठीक है, ये जानवर कह रहे छत से गिरा है, तो हमारे यहाँ कराची में भी अब ये कल्चर काफी अच्छे से हम देखते हैं आ रहे हैं कि इस तरह के कुछ छतों पे पाले जाते हैं जानवर, फिर उनको क्रेन के जरिए उतारा भी जाता है, गिरा भी देते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस भी देखने को मिली, तो कितनी ऊपर से जो है उसको तो गिर गए। अब ऐसा इतनी सुस्ती गफलत की या जिसने भी की इस तरह के मामलात में, तो क्या होना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए बहुत रिस्की है और बात नहीं थी कि आपको तजुर्बात बहुत सारे होंगे और आप उसको आसानी छत से क्रेन के जरिए उतार लेते होंगे, लेकिन जाहिर है कि और फिर नतीजे तो हमारे सामने ही है ना कि जो आमतौर पर डूबता वही है जो तैराक होता है, तो आप उसको उतारने वाले अपने आप को माहिर ही समझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं को हमने देखा, वीडियोस ऐसी देखी है कि जानवर गिर गए और इतनी बुलंदी से वो नीचे गिरा कि अलमान वल हफीज। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो अगर आपने छत पे पालना है तो फिर आपके पास कोई दूसरा जरिया होना चाहिए, इसी चढ़ाई होनी चाहिए कि जिसके जरिए आसानी आप जानवर को ऊपर चढ़ा सकें। अगर नहीं चढ़ा सकते तकलीफ दिए बगैर, तो फिर इस सूरत में आप छत पे ना पालें, किसी और जगह पर उसको
पालें। अच्छा, पूरे साल इसको पाला है छत पर, तो इसकी छत पे कुर्बानी नहीं हो सकती?
हाँ, ये एक अलग
करें, ये मामला करें, और
चढ़ाने के लिए भी मसला ये ना कि चढ़ाना भी तो ये फिर इसी तरह करते होंगे ना?
नहीं, आम अगर छोटा जो जानवर होता है और वो चढ़ने में बाद उकात है, और लेकिन ये मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूँ कि जो पूरा पूरा साल उनके पास एक नहीं होता,
बहुत सारे पास
अभी अगले सालों के भी होते हैं, तो फिर कुर्बानी भी ऊपर ही कर
पर ही कर लें, यही बेहतर तरीके का है। आप नीचे उसको जिस अंदाज में उतारते हैं, आप चढ़ाते हैं पता नहीं किस तरह होंगे, अगर छोटे जानवर है उनको ऊपर चढ़ाते हैं तो फबीहा, लेकिन जाहिर है के सारे छोटे होंगे भी मुश्किल है, बड़े जानवर भी चढ़ाते होंगे तो फिर इसी तरह क्रेन के जरिए चढ़ाते होंगे, और छोटा जानवर भी इतनी आराम से तो नहीं चढ़ता होगा, नहीं गाय भैंस वगैरह अगर ये चढ़ाते हैं बेल वगैरह तो एक आसान काम तो नहीं होगा चढ़ाना, छोटा जानवर भी तकलीफ के साथ ही ऊपर चढ़ता होगा। तो बहरहाल उसूल यही है, जाप्ता यही है कि एक जानवर को कम से कम इन उमूर के अंदर तकलीफ दी जाएगी, शरीयत के जो आकाम है उसको पूरा किया जाएगा, और ये जो तमाशा है क्रेन के जरिए चढ़ाना या क्रेन के जरिए उतारना, ये बहरहाल पसंदीदा नहीं है। लोग तमाशा बनाकर वैसे ही अलग से देख रहे होते हैं, ये एक अलग इसके अंदर खराबियां आ जाती हैं, और दूसरा जानवर के साथ ठीक ठाक किस्म के रिस्क होता है कि किसी वक्त भी वो अगर क्रेन से गिर गया तो गया काम से।
ये सवाल कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं, कह रहे हैं कि 40वें पर अपने रिश्तेदारों को बुलाया और बिरयानी वगैरह बनाई, फातिहा खाना खिलाया, कैसे क्या कहते हैं आप?
40वें में तो किसी को भी खाना खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप 40वां कर रहे हैं और उसमें कोई इसाले सवाब वाली सूरत नहीं है, तो फिर बेहतर ये है कि आप ये गरीबों को ही खिलाएं। लेकिन अगर 40वें में आपने अपने अमीर रिश्तेदारों को भी खिलाया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, वीडियो सवाल हमारे पास।
मेरा आपसे ये सवाल है कि कसाई जानवर को जिबा करने के बाद डायरेक्ट उसके दिल पे छुरी मार देते हैं उस जानवर को ठंडा करने के लिए, तो मुफ्ती साहब ये रहनुमाई फरमा दीजिएगा ऐसा करना कैसा?
जी
देखिए, जो भी फजूल तकलीफ है हद से, यानी जितनी जरूरत है उससे बढ़कर जो भी तकलीफ है वो सब मकरूह है। जो जानवर को जबह करने का हुक्म है कि उसकी चार रगें या उनमें से अक्सर को काट दिया जिससे जानवर हो गया हलाल, अब उससे आगे इसको काटना बाज़ुकात ये दिल वाली बात होती है जो इन्होंने बयान की, और बाज़ुकात बिल्कुल उसको काटते 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 उसका नीचे तक खाल तक उसको ले जाते हैं,
मोहरा जिसे कहा जाता है,
जिसकी कोई हाजत नहीं, मोहरा तक ले जाते हैं, हाजत नहीं होती इसकी जो ये कर रहे होते हैं, और बाज़ होकर तो सर कट जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये सारे के सारे मकरूह काम है, नापसंदीदा काम है, और जानवर को बिना किसी वजह के तकलीफ देनी है, तो ये जो तकलीफ देनी है یہ مکروہ کام ہے اور گناہ کا کام ہے کہ اس طریقے سے بندہ جو ہے وہ جانور کے دل کے اوپر چھری لگائے, یعنی ابھی اس کے اندر حیات موجود ہوتی, وہ تڑپ رہا ہے, اس کا خون بہہ رہا ہے. شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ اس سے نفع اٹھانے والی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, لیکن ایک حد کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر بھلائی کو لکھ دیا ہے, لہذا جب تم ذبح کرو تو اس وقت بھی احسان کے ساتھ ذبح کرو اور جانور کو راحت دو. تو جانور کو راحت دینے کا حکم دیا گیا ہے, یہ تو بلا وجہ کی تکلیف پہنچانا ہے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مرتبہ اس حوالے سے جو ہے وہ تربیت کی ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ ان قصائیوں کا, یعنی جو یہ گوشت فروش ہوتے ہیں جو کاٹنے کے لیے آئے ہوتے ہیں قصاب, ان کا ٹائم آگے دیا ہوا ہوتا ہے. اس دن ان کی مصروفیت سب کے سامنے ہوتی ہے کہ کتنے یہ مصروف ہوتے ہیں, تو بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جانور ٹھنڈا ہو جائے. تو اگر آپ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے رکھیں گے, ایک تو آپ کا اپنا ذہن ہونا چاہیے, پھر آپ کے اندر جرات ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سمجھا سکیں کہ بھائی پیسے دے رہے ہیں, فری میں نہیں کٹوا رہے, اور اپنی قربانی کی ہم سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں, واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں, تو پھر طریقے کے ساتھ کریں گے. تو آپ اس کو جیسے ہی اس نے فری پھیری, آپ اس کو چائے کا کپ دے دیں, چائے پی,
ٹھیک ہے, ایک حال بتایا,
وہ چائے پی لے, اتنی دیر میں آپ وہ جانور امید ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اس کے بعد وہ کاٹتا پھرے اس کو, ورنہ وہ وقت بچانے کے لیے خام خام اس کے دل کے اندر چھری مارے گا, اور بعض اوقات وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور اسی کے خال کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح سے چھری کو پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری تکلیف والے کام ہیں, اس کا خون بہنے دیں, وہ خون بہ جائے, اس کے بعد پھر بھرے, اس کا جو بھی گوشت وغیرہ بنانا ہے وہ بناتے رہے.
ان لوگوں کو بھی تو کوئی خوف خدا ہونا چاہیے کہ یہ تو قربانی تو سال میں ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ جس میں اتنے لوگ کھڑے ہیں تو بھی یہ ایسا کر لیتے ہیں, تو جو پورے سال یہ جانور ویسے بیچنے کے لیے کاٹتے ہیں, یہ حکم ان کے لیے بھی ہے جانوروں کا؟
کہیں بھی ہوگا. سب بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا, بسا اوقات ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں, ان کو تو اور زیادہ
کاٹ کاٹ کے,
یہ بالکل ان کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ قبر حشر کو یاد کرتے رہے. یعنی اگر ان کے اندر خوف خدا ہے تو ہمارے اسلاف کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں, صحابہ کرام علیہ مدوان میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے تھے لیکن ان کے دل نرم تھے, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو یاد رکھتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو ایسے افراد الحمدللہ, جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے تو اس میں کئی افراد ایسے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے دل نرم ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کے اندر حاضر ہوتے رہتے ہیں, باتوں کو سنتے رہتے ہیں, تو اس سے ان کا دل یہ نرم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ افراد ان کو تو اور زیادہ اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ دینی ماحول کی طرف راغب ہوں, اس سے وابستہ ہوں, تاکہ پھر ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بھی پہچان حاصل ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو چاہے وہ اکیلے میں ذبح کر رہے ہوں, چاہے وہ سب کے سامنے ذبح کر رہے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سامنے ذبح کرنے والے بھی عام طور پہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کا کوئی علم ہوتا نہیں ہے. یہ جو جھمگٹا لگا ہوا ہوتا ہے, لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ کون سے علامہ ہوتے ہیں, ان کو کون سا دین کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ تو مزیرے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. کسی کسی کو سمجھ ہوتی ہے تو وہ پھر سمجھاتا ہے کس طریقے سے آپ کر لیں, ورنہ تو جانور کو جس طرح نعوذ باللہ تکلیف پر تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے, اس کا تو شمار ہی نہیں ہے نا. اگر اس پر گفتگو کرنا شروع کریں کہ اول وقت سے جب لینے کے لیے جاتے ہیں, اس وقت سے لے کر قربانی تک کے وقت تک جانور کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی ہیں, وہ ایک الگ پورا ٹاپک بن جاتا ہے. تو کسی بھی طور پر اپنے اس قربانی کے جانور کو تکلیف نہ دیں, نہ تکلیف دینے والے کوئی کام اختیار کریں.
اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بس وقت اپنے جانور بھی لا کر بیمار بھی تو کر لیتے ہیں. اب جانور بھی عام طور پر وہ بھی سوتا ہے, اور عام جہاں سے وہ آیا ہے وہاں دن بھر جاگنا ہے اور رات بھر سونا ہے, لیکن جب بڑے شہروں میں آتا ہے, کراچی کی بات کریں, تو یہ اس کی ترتیب بھی الٹ کر دیتے ہیں, ساری رات اس کو جگاتے ہیں, اس کو پھیراتے ہیں. اچھا یہاں شہر ہے چکے, تو وہاں دن کے ٹائم بھی ایسا آرام ملتا نہیں ہے, تو جانور کے اندر بھی یوں بیماری بھی, کئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ بھی وہ آیا اب بالکل لاغر ہو گیا, کھا نہیں رہا, ناراض ہوا پڑا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو اس سے ہماری, تاکہ قربانی بھی ضائع نہ ہو, جانور بھی ہو تندرست, تو کوئی ایسا مرض بھی اس کو نہ ہو, تو جب ہم ان کا یہ خیال کریں گے جو کھانے پینے میں اس میں کرتے ہیں, اس کے آرام میں بھی, چلائی پھرائی کے اندر بھی اس چیز کا خیال وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. وہ بھی جانور ہے, اس میں بھی جان ہے, وہ بھی تھک جاتا ہے, جس طرح انسانوں کو تھکاوٹ ہو جاتی, اس کو بھی کئی چیزوں میں یہ معاملات درپیش ہو جاتے ہیں. کچھ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حج یا عمرہ وغیرہ کے لیے لون لے سکتے ہیں, किसी की तरह से जैसे हज बदल होता है तो उमरा बदल भी होता है कोई?
उमरा बदल तो नहीं होता, सिर्फ बदल जो है वो हज का बदल है। हज ऐसी इबादत है बदनी एतबार से, क्योंकि इसके अंदर बदन का भी इस्तेमाल है, यानी बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो उजर की सूरत में नियाबत हो सकती है। बाकी नमाज हो गया, रोजा हो गया या उमरा हो गया, इसके अंदर ये बदनी इबादतें इनके अंदर नियाबत नहीं होती, यानी कोई दूसरा उनकी तरफ से अदा नहीं कर सकता, तो उमरा बदल नहीं होता, उमरा अपनी तरफ से ही किया जाएगा, बाकी उसका इसाले सवाब आप जिसको चाहें कर दें। और
लोन लेना
कर्ज लेना, तो इसमें यह है कि अगर तो इस बात की उम्मीद है कि वो कर्ज अदा कर देगा और इसकी नियत भी है अदा करने की, तो फिर इस सूरत में वो कर्ज दे सकता है और हज अदा कर सकता है, उसका हज फर्ज ही अदा होगा, जबकि वो फर्ज की नियत करेगा, मुतलक नियत करेगा, तो उसका फर्ज अदा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो उसका कर्ज अदा करना होगा उसको जिससे भी है उसको।
अब बज़ाहिर अगर किसी को कोई चांस ऐसे नहीं है, बज़ाहिर अदायगी के हवाले से भी नहीं है, तो जाएगा वो, हो तो जाएगा, करना क्या चाहिए, हज लेना चाहिए इतनी भारी रकम लाखों लाखों?
देखें अब इस पर तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके ऐसे जराए हैं कि वो अदा कर देगा,
एक बीसी आ रही है, कुछ और मामला
आ रहे हैं या उसकी जो बीसी है
ठीक,
कि उसमें से वो बचत कर लेता है, फिर वक्त इतने नहीं है लेकिन उसे पता है कि मैं चंद माह के अंदर इसको अदा कर दूंगा या कुछ अरसे में अदा कर दूंगा, वो आजमाइश के अंदर नहीं आएगा तो ठीक है वो ले, लेकिन जिसको इस बात का अंदेशा हो कि वो परेशानी के अंदर आ जाएगा तो फिर वो कर्ज ना ले। अमीरुल सुन्नत ने तो यहाँ तक जो चलमदीना का काफिला बनता है तो उसमें आपने अपनी सवारी वगैरह बेचने से भी मना किया, कि बाजों का जज्बात में लोग आ जाते हैं और अपनी गाड़ी बेच देते हैं और हज के लिए चले जाएंगे, फिर बाद में आके परेशान हो रहे होते हैं कि गाड़ी नहीं होती तो किराए की गाड़ियों में सफर करना पड़ता है, आप टेंशन के अंदर आते हैं। तो अगर फर्ज हज नहीं है आपके ऊपर तो फिर उसी सूरत में आप कर्ज लें जबकि आसानी के साथ उसकी अदायगी हो सके।
ठीक है, एक सवाल है कि अगर कोई बहन अपने घर से ही घर वालों से छुपा कर अपनी किसी दोस्त को कोई चीज दे दे तो गुनाहगार होगी, क्या कहेंगे?
देखिए उसकी अपनी चीज है जिसे वो दे रही है और दे भी जिसे रही है वो भी उसकी दोस्ती है और कोई उसके अंदर खराबी नहीं है, तो शरीय एतबार से तो इतना होगा कि उसका देना जायज हो जाएगा, लेकिन दीगर अखलाकी एतबार से और मुआशरती एतबार से इसके जुदागाना मामलात होते हैं कि बसा औकात जैसे शादीशुदा है और अपने शोहर से छुपा के किसी को दे दिया, अब बाद में शोहर को पता चलता है कि यार ये इस तरह दे रही थी उसे, तो मुमकिन है कि शोहर को बुरा लगे, यार मुझसे पूछे बगैर इस तरीके से दे दिया, अपनी ही चीज थी लेकिन मुझसे तो पूछना चाहिए था कम से कम, तो उस कंडीशन को देखना होगा कि ऐसा ना हो कि उसके शोहर को बुरा लगे, या वालिद है, वालिद साहिब है, उनको फील हो या वालदा को फील हो कि क्या कर रही है, तो अपनी चीज भी दे रही है लेकिन इसमें जो मुआशरती मामलात हैं, अखलाकी मामलात हैं, उसको पेश नजर रखना भी जरूरी होगा कि बाद में उसकी वजह से खुद इसकी जात को तोहमत न लगे।
ठीक है, मजीद सवाल।
गुलाम मुर्तजा अत्तारी मुल्तान, वितर की दो रक्तों के बाद अगर सलाम फिर जाए, फिर याद आने पर वो खड़ा हो जाए तो इस अगर दुआए कुनूत वगैरह भी पढ़ ले तो सरदार साहब कर लिया जाए, तो ये क्या तरीका है इसके बारे में मालूमात करने?
अगर सलाम फेरने के बाद नमाज की हुरमत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, नमाज में जो काम नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं किया, किसी से बात नहीं की, खाना पीना शुरू नहीं कर दिया, सलाम का जवाब नहीं दिया, उठ के कहीं चल दिया और मस्जिद से बाहर निकल गए, ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस सूरत में खड़े हो जाएं और अपनी नमाज को मुकम्मल करें, दुआए कुनूत वगैरह सब पढ़ें और आखिर के अंदर सजदा साफ कर लें, नमाज हो जाएगी। और अगर नमाज की हुरमत के खिलाफ कोई काम किया है, किसी से बातचीत करना शुरू कर दी, कुछ खा पी लिया या वहां से खड़े होकर चले गए, मस्जिद से बाहर निकल गए हैं, तो फिर इस सूरत में जो नमाज है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब दोबारा आपको वो नमाज पढ़ना
नए सिरे से पढ़ी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, अपने प्रोग्राम मुनाज़ा किया, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। ये वालिदा
जाने मसाइल दो लमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है हमको रब से।